नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में आतंकवाद का समर्थन करने वाले पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों सहित सभी संबंधित पक्षों को लोकसभा चुनाव के दौरान कागज का कम से कम उपयोग करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर में आग लगने से 14 लोग घायल। आज देशभर में रंगों के पर्व होली का उल्लास। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल में हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्रों और सिक्किम में बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम बेंगलुरु में पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं सिद्धार्थ हूं। भारत ने आतंकवाद को समर्थन देने पर पाकिस्तान की आलोचना की है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को सलाह दी जानी चाहिए कि वो आतंकी फैक्ट्रियां बंद करे जो जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकी हमले करवाती हैं। भारत ने कहा कि पाकिस्तान का इतिहास है कि वो आतंकियों को मदद और पनाह देता रहा है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कल जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं सभा के दौरान पाकिस्तान के बयान का उत्तर देने के अपने अधिकार में ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा घोषित आतंकवादियों की विशाल संख्या को सहायता और पनाह देने का दृढ़ रिकॉर्ड है। उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक आतंक का चेहरा ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान नहीं था। भारतीय क्षेत्र के बारे में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज करते हुए उपसभापति ने कहा कि अगर लोकतंत्र के बारे में बहुत खराब रिकॉर्ड रखने वाला कोई देश भाषण देता है तो हंसी आती है।
I take the floor to reject the preposterous comments made by Pakistan against my country. Lectured by a country which has an abysmal track record of democracy is laughable. Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh, they have been and will always remain an integral and inalienable part of India. Pakistan would be well advised to stop its terror factories that continue to launch countless cross-border terrorist attacks in Jammu and Kashmir. Pakistan has an established history of harboring, aiding and actively supporting terrorists.
विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि संविधान में अनुच्छेद 370 का प्रावधान तात्कालिक व्यवस्था के तौर पर किया गया था और इसे लंबे समय तक बनाए रखने से देश को नुकसान हुआ है। उन्होंने सिंगापुर में भारतीय समुदाय के साथ चर्चा में कहा कि अनुच्छेद 370 को बढ़ाने से अलगाववाद, हिंसा और आतंकवाद की भावना को बल मिला। डॉ जयशंकर ने कहा कि इसके कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रगतिशील कानूनों को लागू करने में व्यवधान उत्पन्न हुआ।
Article 370, which was a temporary measure of the Indian Constitution, by extending it, two things happened which harmed us as a nation. One, it created a force of separatism, of violence, of terrorism, and this became a problem for the security of the entire country. And the second, it prevented very progressive laws from being extended to Jammu and Kashmir and Ladakh at that point of time. So today you can see the benefits of the change that has happened.
रूस के मॉस्को में शुक्रवार को आतंकी हमले में 137 लोगों की मृत्यु के बाद कल एक दिन का शोक रखा गया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोषियों की जल्द पहचान कर कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन देने के बाद कल राष्ट्रीय शोक दिवस की घोषणा की। रूसी अधिकारियों ने बताया कि हमले के संबंध में 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इनमें 4 बंदूकधारी शामिल हैं। इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। फ्रांस ने मॉस्को में हुई गोलीबारी के बाद अपने देश में उच्च स्तर की चेतावनी देते हुए आतंकी घटनाओं के प्रति लोगों से सतर्क रहने को कहा है। फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों और रक्षा विभाग के साथ बैठक के बाद कल ये जानकारी दी। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा कि पेरिस में ओलंपिक खेलों के आयोजन से पहले आतंक के प्रति सतर्कता बरतने का फैसला किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/hindi और हमारी मोबाइल ऐप newsoneair पर भी उपलब्ध है। चुनाव आयोग आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल चुनाव प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहा है। आयोग ने चुनाव मशीनरी और राजनीतिक दलों को मतदाता सूची और चुनावी सामग्री के लिए कागज का उपयोग कम से कम करने के निर्देश जारी किए हैं। चुनाव निकाय ने ई बुक्स और ई डॉक्यूमेंट्स के उपयोग पर जोर दिया है और डबल साइड प्रिंटिंग और लेआउट अनुकूलन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। एक रिपोर्ट।
चुनाव आयोग ने इस लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ज्यादा कम्युनिकेशन करने को कहा है। पर्यावरण अनुकूल चुनाव के लिए चुनाव कार्य में लगे कर्मियों के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के प्रयोग से पूरी तरह से बचने का निर्देश दिया है। साथ इस बात के भी आदेश दिए गए हैं कि चुनाव के दौरान कचरे के संग्रह की समुचित व्यवस्था की जाए। हर प्रकार के कचरे के निपटान की सुविधा भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग के अलावा चुनाव आयोग ने पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने और कार पूलिंग को प्रोत्साहित करने का भी आदेश जारी किया है। इसके अलावा चुनाव के दौरान कर्मियों और मतदाताओं द्वारा तय की जाने वाली दूरी को कम करने पर बल दिया है। राजनीतिक दलों से यह कहा गया है कि वे चुनाव प्रचार के कार्यक्रमों में नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करें। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटों पर दो चरणों में 26 अप्रैल और 7 मई को मतदान होगा। दूसरे चरण के चुनाव की अधिसूचना 28 मार्च को और तीसरे चरण के लिए 12 अप्रैल को जारी होगी। एक रिपोर्ट।
कर्नाटक में दो चरण में लोकसभा मतदान होंगे। हर चरण में 14 मतक्षेत्रों में चुनाव होंगे। कुल 28 क्षेत्रों में 5 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। मतदाता सूची में 5.42 करोड़ मतदाताओं का नाम अंकित है, जिनमें 11 लाख से ज्यादा युवा मतदाता हैं, 38,000 से ज्यादा दिव्यांग मतदाता हैं और 5.70 लाख से ज्यादा मतदाता 85 के आयु के ऊपर हैं। बेंगलुरु नॉर्थ संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा और उड़पी चिकमंगलुरु क्षेत्र में सबसे कम मतदाता हैं। 28 संसदीय क्षेत्र में 58,834 मत केंद्र हैं, जिनमें 1,120 पिंक बूथ है। दिव्यांग और युवाओं द्वारा संचालित 224 प्रत्येक मत केंद्र रहेंगे। 40 एथनिक और 200 थीम बेस्ड मत केंद्र रहेंगे। चुनाव कार्य के लिए 3 लाख से ज्यादा कर्मी लगाए गए हैं। इस चुनाव में बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन है। कांग्रेस सभी 28 सीटों से लड़ेगी। बीजेपी 25 सीटों से और जेडीएस 3 सीटों से चुनाव लड़ेगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
तेलंगाना में लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले ही राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। चौथे चरण में 13 मई को राज्य की सभी 17 सीटों पर एक ही दिन मतदान होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @KIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आज सुबह आग लग गई। ये घटना भस्म आरती के दौरान घटी। इस घटना में पुजारी समेत 14 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को इंदौर और उज्जैन के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
अगर भस्मारती में उसी ईमानदार मंदिर की चांदी की जो परतें चढ़ी रहती उसको बचाने के लिए गुलाल डलती है तो कपड़े की अंदर पर्दा बनाया गया था। संयोग से भस्मारती के समय आरती के थाली पे गुलाल गिरा तो उससे पर्दे जले और जो पुजारी कुछ थे वो उनके ऊपर वो थाली पलटी है। उसके कारण से पुजारी घायल हुए। कुछ लोग इंदौर में है, कुछ उज्जैन में। भगवान की दया है कि कोई बड़ी घटना नहीं घटी है, लेकिन फिर भी घटना जो भी घटी उसकी मजिस्ट्रियल जांच के हमने आदेश भी दिए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल मंदिर में आग लगने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सभी घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। श्री मोदी ने कहा कि राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव सहायता कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने महाकाल मंदिर में आग लगने की घटना के बारे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से बात की है। उन्होंने घटना के बारे में जानकारी ली। होली का पर्व देशभर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने रंगों के पर्व होली पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि होली हर्षोल्लास और खुशियों का त्यौहार है जो लोगों में आशा और उत्साह की भावना जगाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि रंगों का ये त्यौहार प्रत्येक व्यक्ति को प्यार के बंधन में बंधने और बसंत के स्वागत का संदेश देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि होली जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगी। इस अवसर पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत में दिल्ली एम्स के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर जे एस तितियाल ने लोगों को आंखों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है।
प्रिकॉशन लेना बहुत ही जरूरी है। उसमें रंग यूज करते हैं तो ड्राई रंग यूज करें, जैसे गुलाल है, ये धोने के बावजूद भी आपकी आंखों में इरिटेशन, रड़काव या फिर पेन हो रहा है तो हॉस्पिटल में जाके आंखों का चेकअप कराना। जहां तक और प्रिकॉशन है, यदि आप कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं तो उसके साथ नहीं खेलना चाहिए। जिन लोगों को एलर्जी है, आंखों की एलर्जी या फिर जो अस्थमा के पीड़ित है, उनको भी इस रंग से दूर रहना चाहिए।
उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम से ब्रज मंडल तक पूरे प्रदेश में होली का उल्लास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल रात गोरखपुर में होलिका दहन शोभा यात्रा में शामिल हुए। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोभा यात्रा के दौरान प्रहलाद की आरती उतारी और उनके चित्र पर पुष्प वर्षा की। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ फूलों की होली भी खेली। राज्य के लोगों को होली की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी भेदभाव ना हो और सभी लोग एकजुट रहें, यही होली का संदेश है। अयोध्या में इस वर्ष श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भक्त भव्य स्तर पर होली मना रहे हैं। इस होली को अविस्मरणीय बनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने विशेष तैयारी की है। अयोध्या के राम मंदिर में होली उत्सव के दौरान भगवान रामलला को गुलाल लगाया गया और रामलला को कचौरी, गुजिया, पूड़ी, खीर जैसे विशेष व्यंजनों का भोग लगाया गया। वहीं ब्रज क्षेत्र में देश ही नहीं विदेश से लोग होली मनाने पहुंचे हैं। यहां होली धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जाती है। लठमार होली, फूलों की होली, लड्डूमार होली सहित विभिन्न प्रकार की होली मथुरा वृंदावन में महीने भर चलने वाली होली उत्सव का हिस्सा है। आकाशवाणी समाचार लखनऊ।
देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र पश्चिम बंगाल में हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक लगातार वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश में अधिकांश स्थानों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर हिमपात हुआ। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कल से 29 मार्च तक गरज के साथ बारिश हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत ने कल विश्व कबड्डी दिवस के अवसर पर 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा। हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवी लाल इंडोर स्टेडियम में ये रिकॉर्ड बनाया गया। होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन और हरियाणा सरकार के बीच हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य विश्वभर में कबड्डी को प्रोत्साहन देना शामिल है। इस आयोजन के लिए भारत का चयन करने का प्रमुख कारण ये था कि इस आयोजन के लिए हरियाणा में विशेष रूप से स्थान उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में आतंकवाद का समर्थन करने वाले पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों सहित सभी संबंधित पक्षों को लोकसभा चुनाव के दौरान कागज का कम से कम उपयोग करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर में आग लगने से 14 लोग घायल। आज देशभर में रंगों के पर्व होली का उल्लास। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल में हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्रों और सिक्किम में बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम बेंगलुरु में पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।